लोग कहते हैं कि यार ये जो नमाज है ना, नमाज तो असल में डिसिप्लिन सिखाने के लिए, जमात जो है ये तो एक पाबंदी वक्त सिखाने के लिए है, वुजू जो है ये तो सफाई सुथराई सिखाने के लिए है, रोज़ा जो है ये तो महज जब्ते नफ्स और अपना सेल्फ कंट्रोल के लिए है। अब ये बातें बाज़ औक़ात ज़ाहरी जुमलों के अतबार से बड़ी अच्छी लगती, वाजिबा क्या बात है कि नमाज डिसिप्लिन सिखाती है, जमात जो है वो सफ बंदी और लाइन में लगना सिखाती है, और वुजू जो है वो तहारत सिखाता है, और रोज़ा जो है सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। लेकिन यही बात दो अंदाज में कही जा सकती, एक तो ये कि इन इबादात से मकसूद यही है, अगर ये बात है तो गलत है। दूसरा ये है कि भाई इबादात की जो ज़रूरत अहमियत है वो फ़ी नफसी ही है, यानी वो अपनी जगह ज़रूरी है, हाँ उसके साथ ये फ़वाद भी हासिल हो जाते हैं कि जब बंदा नमाज़ पढ़ता है और पांच वक्त वज़ू करता है तो उस वज़ू से उसे तहारत, उसे फ्रेशनेस, उसे बदन की ताज़गी हासिल होती, और ये उसकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। जब वो इबादत करता है तो इबादत की वजह से उसे कॉन्सेंट्रेशन भी मिलती है, इसके साथ जमात की पाबंदी जो है डिसिप्लिन भी सिखाती है, लाइन में लगना भी सिखाती है। ये है इजाफी फवायद, ये असलुल उसूल मकसद ये नहीं है, इसे कहते इजाफी फवायद। तो इजाफी फवायद के अतबार से ये ठीक है और ये चीज़ें होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये कह देना कि इबादत के पीछे बस यही मकासद है और इबादत इन्हीं के लिए है और ख़ुद इन इबादत का बंदा जो नमाज़ पढ़ता है और ख़ुदा की बारगाह में खड़ा होता है या वो रोज़ा रखता है और अपने नफ्स के ऊपर सख्ती करता है ताकि उसके जज्बात जो है वो दबें, उसकी ख्वाहिशात जो है वो दबें, ये बजाते ख़ुद ये मकसूद नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये इबादत मकसूद बिज़ात भी हैं और इसके अलावा ये दीगर कई अहम चीज़ों के लिए ज़राए और असबाब भी हैं। कुरान हदीस के अगर नुसूस और जो है वो अहकाम को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये वाज़े तौर पे मकसूद भी ज़ात भी हैं और ये ज़राए भी हैं। जैसे अब नमाज को ले लें, नमाज मकसूद भी ज़ात है, ये बज़ाते ख़ुद मकसूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज को ईमान फरमाया, चुनाचे कुरान पाक की आयत मुबारक सूरतुल बकरा में फरमाया वमा कानल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम, अल्लाह की ये शान नहीं कि ऐ लोगो तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर दे, और यहाँ ईमान से मुराद है नमाज़ें। ये उन लोगों के बारे में है जो बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज़ें पढ़ते रहे और किबला तब्दील होने से पहले फौत हो गए, तो उनके बारे में लोगों को तशवीश थी कि भाई इनकी नमाज़ों का क्या बनेगा, इन्होंने तो किबले की तरफ पढ़ी नहीं है, बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ते रहे। तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कानल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम, अल्लाह की ये शान नहीं कि ऐ लोगों तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे। अब ये देखिए ईमान किसे फरमाया, ईमान अल्लाह ताला ने नमाज को फरमाया, तो ये तो नहीं हो सकता कि गैर मकसूदी चीज़ है और उसे जो है वो ईमान करार दे दिया गया, नहीं, वो बजाते ख़ुद मकसूद चीज़ है। इसी तरह हदीस मुबारक में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सब हालतों से ज़्यादा सजदे में अल्लाह ताला के करीब होता है। जब बंदा सजदा करता है तो वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होता है। उसका मतलब ये हुआ कि ये नमाज, ये सजदा, ये बजाते ख़ुद इतनी अहम चीज़ें हैं, क्यों, इसलिए कि इसमें आजजी है, इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को जो है वो सरेंडर कर देना है, इसमें अपने अपनी नफ़ी है, नफ़ी ज़ात है इसके अंदर, ये खुदा की बारगाह में बंदा जो है वो अपने आप को पेश कर देता है। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु, तो बेशक बंदा अपने रब से सरगोशियाँ करता है, अपने रब से बातें करता है। तो अब ये खुद नमाज ही का फरमाया कि ये अल्लाह ताला से मुनाजात का नाम है, ये रब से मुनाजात है। अच्छा, फिर इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और हदीस मुबारक है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरतुहु अलैह, کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں. یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ لِيَ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں, میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا, اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا کروں گا. اب یہ جو فضیلت ہے, یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے, یہ کس چیز پہ؟ یہ انہی عبادات کے اوپر فرمائی گئی, انہی فرائض اور نوافل پہ فرمائی گئی, انہی نمازوں پہ فرمائی گئی کہ بندہ فرض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور شے کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا. خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں, یہ فرض روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے. اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پہ شروع کر لیتا ہے, وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے, وہ نفلی روزے رکھتا ہے, وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, وہ نفلی حج کرتا ہے, وہ عمرہ کرتا ہے, تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے, اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے. تو اب یہ فضائل کس چیز کی ہیں؟ یہ نماز کے ہیں. تو اب اگر نماز محض ایک زمینی سی چیز ہے کہ جناب بس ادھر ادھر کے کام کر لیے اور بس وہ انسانیت کا نعرہ لگا دیا اور دو چار دوائی دارو کے کام کر دیے تو بس ٹھیک ہے جی, سارے کام ہو گئے اور یہ نمازیں جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن جو حدیثیں فرما رہی ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, وہ تو یہ. تو لہٰذا ان کو یہ زمینی چیزیں قرار نہیں دیا جا سکتا ہے.